SBS हिंदी।
ऑस्ट्रेलिया में अर्थव्यवस्था धीमी होने के कारण ऑस्ट्रेलियन लोगों पर वित्तीय संकट छाया हुआ है और इसके साथ ही उन ऑस्ट्रेलियन लोगों की संख्या बढ़ने की चेतावनी दी गई है जो व्यक्तिगत तौर पर दिवालिया हो रहे हैं या दिवालिया होने की कगार पर हैं। तो आज कुछ जानकारी कि कैसे इस असहनीय न चुका सकने वाले ऋण से निपटा जा सकता है। दिवालिया हो जाना या किसी लेनदार द्वारा दिवालिया घोषित किया जाना, जिसके पास बकाया पैसा है जिसे चुकाया नहीं जा सकता, ये एक गंभीर मामला है और इसके कानूनी परिणाम हैं। दिवालियापन की शुरुआत होती है अक्सर एक छोटे से उस ऋण के साथ जो समय पर चुकाया नहीं गया या चुकाया नहीं जा सका और बाद में उसको भूल गया हो, लेकिन देर से भुगतान करने की फीस, जुर्माना शुल्क और उस ऋण पर लगने वाले बड़े ब्याज के साथ ये छोटा सा उधार जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ बन सकता है। और अब जब इसके साथ जुड़ जाते हैं वो व्यक्तिगत कारण जैसे कि बेरोजगारी, संबंध टूट जाना या बीमार हो जाना, तब इस कठिन वित्तीय स्थिति में एक हताशा सी स्थिति बन जाती है। न्यू साउथ वेल्स के सरी हिल में फाइनेंशियल राइट्स लीगल सेंटर में माटा सोलोफोनी एक वरिष्ठ वकील हैं। वो बताती हैं कि उन्हें लोगों के द्वारा उनके दिवालिया होने के बारे में एक बड़ी संख्या में फोन आ रहे हैं।
In more recent weeks, we have seen an increase in those sort of calls, and particularly fairly complex bankruptcy issues. Definitely been seeing an increase in inquiries or calls about bankruptcy.
माटा सेलोफोनी कहती हैं कि ये पूछताछ अक्सर उन लोगों की है या उन वित्तीय संस्थानों द्वारा संचालित होती है जिससे ग्राहकों को कानूनी कार्रवाई के कारण भुगतान में चूक जाने या उसके पीछे रह जाने का खतरा होता है।
What I'm seeing a lot of is not necessarily that people are voluntarily becoming bankrupt. They're being issued with a notice that a creditor is commencing bankruptcy proceedings to make them bankrupt. So we're getting the calls really quite late in proceedings.
दिवालियापन में घिर जाने की बात एक छोटे से $5,000 तक के ऋण के कारण भी हो सकती है जिसे चुकाया ना गया हो, और इसके परिणाम दुखदायी बन सकते हैं, यहाँ तक कि वो पूरे जीवन के लिए सार्वजनिक रिकॉर्ड पर बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी अथॉरिटी के माइकल पार्किंसन दिवालिया होने के कुछ परिणामों को बताते हैं।
A bankruptcy in Australia usually lasts for 3 years and 1 day. When a person is bankrupt, they lose the right to hold or sell their assets. And instead, a trustee is appointed who will take steps to sell their assets and potentially recover payments from their income.
यानी दूसरे शब्दों में दिवालिया होने वाले लोग अपना घर तक खो सकते हैं। माइकल पार्किंसन कहते हैं कि दिवालिया होने पर उन लोगों के देश के बाहर या इधर-उधर जाने पर भी प्रतिबंध लग जाता है।
The individual will have to get permission from their trustee if they want to travel overseas.
और अब इससे भी बदतर ये हो जाता है कि एक दिवालिया व्यक्ति का नाम सरकार द्वारा गुप्त भी नहीं रखा जाता। व्यक्ति का नाम नेशनल पर्सनल इंसॉल्वेंसी इंडेक्स पर रखा जाता है जो ऑस्ट्रेलिया में सभी व्यक्तिगत दिवालिया होने का एक स्थायी रिकॉर्ड है, और इसे जमींदारों, नियोक्ताओं और बैंकों समेत किसी भी व्यक्ति द्वारा जांचा भी जा सकता है।
The individual's name being put on the National Personal Insolvency Index, which is a permanent record of all personal insolvencies in Australia. This public register is maintained by AFSA and can be searched by anyone for a fee.
उधर क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसियां भी कम से कम 5 साल के लिए दिवालिया होने का रिकॉर्ड रखती हैं, और इसके कारण किसी भी एक प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान से बहुत ही मुश्किल से कोई ऋण मिल सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार ऑस्ट्रेलियन लोग पारंपरिक क्रेडिट कार्ड पर $50 बिलियन से अधिक का भुगतान करते हैं, और आफ्टर पे, अली पे, स्प्लिट इट जैसी नई सेवाएं विशेष रूप से 18 से 35 वर्ष के लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं। 23 वर्षीय सोफिजा पेड्रोविच बताती हैं कि कई बार ये लोग अपने बजट के भीतर रहकर अपने खर्च को रखने के लिए संघर्ष करते हैं और अधिकतर ये लोग कर्ज के परिणामों से भी अनजान होते हैं। उनका मानना है कि कुछ विलंबित भुगतान विकल्प यानी डिलेड पेमेंट ऑप्शंस कई युवाओं को बदतर स्थिति में छोड़ सकते हैं, जैसे कि अक्सर किश्तों या ब्याज मुफ्त चीज़ों का भुगतान करने के लिए विभिन्न तरीके बहुत लोगों को अपील करते हैं जब तक कि वो उस बिंदु पर नहीं आ जाते हैं जहां वे अपने से अधिक खर्च करते हैं।
Because of the way that debt is marketed to us, it seems it's not so much of a scary thing. I don't think anyone really explains what it means when you acquire an item but you don't pay for the item up front. And the whole mask that a lot of the different methods of paying things in installments are sort of interest-free also appeals to people, and then they come to the point where they spend more than they may have.
सोफिजा पेड्रोविक का कहना है कि उनके अधिकांश दोस्तों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसका क्या मतलब है कि वो कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हैं या दिवालियापन की कठोर सच्चाई क्या है।
I don't think that young people that get into afterpay and those mechanisms really know what's waiting for them on the other side of a credit card debt or whatever kind of debt.
माता सेलोफोनी कहती हैं कि व्यापक रूप से सार्वजनिक स्वीकृति के बावजूद कि कर्ज हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, दिवालिया होने का सामाजिक कलंक अभी भी मौजूद है। लोगों को लगता है कि ये एक निजी मामला है और वो मदद नहीं चाहते हैं। ऋण के बारे में किसी से बात करने के लिए बहुत शर्मिंदा रहते हैं।
Definitely, I think there is quite a bit of stigma and debts culturally just seem to be a more private matter. People think it's a personal private matter and they don't seek help. Particularly people of ethnic backgrounds, they're too embarrassed to speak to somebody about debts and aren't seeking the assistance early on to be able to avoid bankruptcy or things like bankruptcy.
Financial Rights Legal Center के एक वकील के रूप में अपने अनुभव से माता सेलोफोनी का मानना है कि आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में कुछ जातीय समुदायों में उधार को ठीक से न संभाल पाने की समस्या बहुत अधिक है। वो कहती हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने वित्त की स्थिति के बारे में इतने हताश हैं कि वो गंभीरता से अपनी जान लेने तक का विचार करते हैं।
I've spoken to a couple of people who have said that that's really the only option they can think of is to commit suicide because of the amount of stress it's causing them.
ऑस्ट्रेलिया में सामुदायिक संगठनों में काम करने वाले योग्य पेशेवरों यानी प्रोफेशनल्स के साथ नेशनल डेट हेल्पलाइन है, जहां वित्तीय संकट में फंसे लोगों को निशुल्क और गोपनीय सलाह दी जाती है। सोमवार से शुक्रवार तक 9:30 बजे से 4:30 बजे के बीच 1-800-007-007 पर फ़ोन कर उनसे सलाह ली जा सकती है।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।